हालेलुया। यीशु मसीह के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां जाए, क्योंकि आज की सुबह बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये मौका नहीं है कि वो अपने दिन का आगाज यहोवा पाक खुदा के नाम से शुरू कर सके। बहुत से ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, बहुत से ऐसे हैं जो क्या है जिस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन मुबारक है आप जो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं कि जिंदा खुदा की क्या कर सके जी, इबादत कर सके। आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके हैं, सब दुआ करना शुरू करेंगे। हर एक जान खुदावंद को पुकारेगी और कहेगी कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरी हौसला फजाई और जिंदगी में जो बातें जो राहें और जो सोच और जो ख्यालात हैं दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको दुरुस्त करने का वसीला बने। सो हम सब दुआ करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के लिए, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा के खुदा खुदा पाक रूह के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलामे खुदा के लिए, आए हुए एक एक नौजवान बेटे और बेटी के लिए। खुदा खुदा आज के कलाम के वसीला से तू हम सब की हौसला फजाई करना, आज का कलाम हम सब के लिए रहनुमाई और खुदा खुदा हौसला फजाई का वसीला ठहरे, और खुदा खुदा आज के कलाम के वसीला से हम अपने दिन का आगाज तेरे पाक और जलाली नाम में कर सकें, और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। अगर खुदावंद यहाँ पर आज कोई जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, माली तौर पर और खुदा खुदा जज्बाती तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहा, तो तेरा कलाम सबकी हौसला फजाई करे। मेरे लबों का रखवाला बन, ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा खुदा की मोहब्बत ना सिर्फ बनी इंसान के साथ दस्तियाब है, बल्कि खुदा की फिक्र कभी भी इंसान को तनहा नहीं छोड़ती। खुदा जो फिक्र, जो देखभाल, जो इंतजाम रखता है, वो बनी इंसान के लिए क्या है जी, बयान से बाहर है। आप सबको याद होगा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को वो तमाम बड़ी भीड़ के सामने जब पहाड़ी वाज करते हुए ये बात कही थी कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना ही उनके जमा करने की जगह है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है जी, खिलाता है। और यीशु मसीह ने इसके बाद कहा, तुम्हारी फिक्र तो इन दो पैसों की चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। सो आए खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, देखभाल, फिक्र और उसकी केयर को देखें जो वो बनी नु इंसान के लिए रखता है। इसलिए मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 15वां बाब। लूका की इंजील जब हम 15वें बाब को पढ़ते हैं तो हमें तीन मुख्तलिफ वाक्यात मिलते हैं। इस तीन मुख्तलिफ वाक्यात में जो हमें मिलती हैं चीजें सुनने को, देखने को, पढ़ने को, क्या है जी, खोई हुई भेड़, खोया हुआ दिरहम और खोया हुआ बेटा। सो इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह की वो मोहब्बत जाहिर नजर आती है जो इंसानों के साथ उसकी क्या है जी, कदर है। आपकी कदर खुदा की नजर में बहुत ज्यादा है। मेरे साथ सारे मिलकर कहें, मेरी कदर खुदा की नजर में बहुत ज्यादा है। मेरी कदर खुदा की नजर में बहुत ज्यादा है। आए इस वाक्य को पढ़िए। लूका की इंजील जब उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो पहली आयत में यूं लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकी बुड़बड़ाकर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इर्द गिर्द हर वक्त कोई ना कोई भीड़, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई बंदी, बच्चे, मसबी रहनुमा उसे देख रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे क्या है जी, ना सिर्फ महसूल लेने वाले, ना सिर्फ गुनाहगार, ना सिर्फ वो जो ठुकराए हुए हैं, बल्कि उस दौर के मजहबी लोग भी यीशु मसीह के नक्शे कदम या उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि देखें ये है कौन, ये करता क्या है, क्यों लोग इसके पीछे जाते हैं, क्यों इसके पीछे भीड़ की भीड़ जमा हो जाती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि यीशु मसीह की फिक्र इंसानों के लिए, इंसानों के लिए उसकी कदर, इंसानों के लिए उसकी मोहब्बत, इंसानों के लिए उसका वो प्यार जिसके लिए वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। सो यहां पर महसूल लेने वाले हैं, गुनाहगार हैं, ठुकराए हुए लोग हैं, और इनके दरमियान फकी फरीसी भी बुड़बुड़ाते हुए कहते हैं कि ये लोग क्यों यीशु के इर्द गिर्द है और यीशु क्यों उनके इर्द गिर्द है। सो सारी बात की फिक्र को, सारे मसले को यीशु मसीह इस बात में बयान करता है। यीशु मसीह ने कहा भीड़ की तरफ देखते हुए, रबियों, फरीसियों और फकीयों और तमाम मजहबी रहनुमाओं को देखते हुए, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए उनसे कहा, तुम में से ऐसा आदमी, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए और 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। उन्होंने यीशु पर सवाल किया कि तू क्यों इतनी इनकी फक्र करता है, क्यों क्यों इनकी कदर करता है, तू क्यों इनके लिए इतने जज्बात रखता है कि गुनाहगार तेरे पास आते हैं, तुझसे सुनते हैं, तेरे पास क्या करते हैं जी, जमा होते हैं। तो यीशु मसीह उनसे सवाल करता है कि तुम में से अगर किसी के पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक हो जाए तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उन 99 को बियाबान में छोड़कर उस एक के पास नहीं जाओगे जो खो गई है। यीशु मसीह दूसरे लफ्जों में उस दौर के चरवाहों को, रहनुमाओं को, पासवानों को, उस्तादों को कह रहा है कि तुमने वो किस्म की फिक्र करना छोड़ दी है जो तुम्हें करनी चाहिए थी, तुमने इंसानों को उस दर्जे से, उस नगाह से देखना छोड़ दिया है जिस ख्वाहिश के साथ, जिस मकसद के साथ मैं कादर मुतले खुदा ने उनको बनाया था। सो यीशु से सवाल करता है कि तुम में से किसी के पास 100 भेड़े हो और एक खो जाए, क्या वो उसे ढूंढने नहीं जाएगा, फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। यहां पर यीशु मसीह उनसे ये सवाल करते हुए कहता है कि पहली बात तुम किस तरह फिक्र करते हो, लोगों की किस तरह तुम्हारे दिल में क्या है जी, मोहब्बत है, क्योंकि वो इस मोहब्बत से क्या थे जी, दूर थे। आपको याद दिलाना चाहता हूं पुराने अहदनामा में यहां पर यीशु मसीह जो बात कर रहा है इन उस्तादों से, इन रबियों से, कि तुमने अपनी भेड़ों की देखभाल नहीं की, ना उनकी मरम पट्टी की, ना उनको संभाला, ना उनके जख्मों को साफ किया, ना ही उनकी रहनुमाई की, तुमने क्या किया उनके साथ। मेरे साथ देखे पुराने अहदनामा में हिजकियल नबी का सहीफा, वहां पर भी यही यीशु हिजकियल से क्या है जी, हम कलाम है, हिजकियल को ये बात कहता है कि मेरे लोगों को बता उन्होंने क्या किया है, मेरे लोगों को याद दिला उन्होंने क्या किया है। सो हिजकियल की किताब जब हम उसका 34वां बाब पढ़ते हैं तो यहां पर लूका 15 बाब की क्या है जी, सच्चाई वाजिया नजर आती है कि क्यों यीशु मसीह ने उससे ये सवाल किया कि तुम में से कौन ऐसा है जिसके पास 100 भेड़े हो और एक खो जाए उसे ढूंढने के लिए ना जाए। आए जरा देखे यीशु मसीह का कलाम यहां पर क्या कहता है, और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजल हुआ। हिजकील बात कर रहा है कि खुदा ने मुझसे बातें करना शुरू की, खुदा ने मुझे बताना शुरू किया, खुदा ने मुझे कहना शुरू किया कि मसला क्या है, कि ए आदमजात इसराइल के चरवाहों के खिलाफ क्या कर, नबूवत कर। खुदा ने उसे कहना शुरू किया कि इसराइल के जो उस्ताद हैं, इसराइल के जो रहनुमा हैं, इसराइल के जो पासवान हैं, इसराइल के जो क्या है जी मजहबी उस्ताद हैं, उन सबको उनके खिलाफ क्या कर, बात कर, हां नबूवत कर, और उससे कह कि खुदावन खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर क्या है जी अफसोस, जो अपना ही पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं। यहां पर बनी इसराइल कौम के उस्तादों की हालत को यीशु बयान करता है हिजकील के वसीला से कि उनके दिल क्या ने खराब है, वो दिखावा करते हैं, वो के करते हैं काम को करना चाहिए उसे वो बदलो जान नहीं करते। तुम चिकनाई खाते हो और ऊन पहनते हो और जो फरबा है उनको जिबा करते हो लेकिन गला नहीं चराते। यहां पर खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तुम अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो और जो भेड़े तंदुरुस्त हैं उनकी पशम यानी कि उनके बालों को कुतर कर बेचते हो और जो मोटी ताजी हैं उनको ही तुम क्या करते हो जी अहमियत देते हो, जो कि तस्वीर है उन लोगों की जो रुपया पैसा रखते हैं, जो कोई असर असूर वाले हैं, जो भले हैं, जो तुमको रुपया पैसा देते हैं तुम उनकी देखभाल करते हो लेकिन गले को नहीं चराते। कभी आपको सुनने में आया होगा कि बहुत दफा कलीसिया में से शिकायत आती पादरी साहब साढ़े घर आते नहीं, पता नहीं असी हदिया थोड़ा दिने, उठता ना ये सवाल, या भाई साहब साढ़े घर भी चक्कर मार दिया करो। यहां पर भी यही बात खुदावन खुदा कह रहा है कि तुम उनके पास गए जिनसे तुमको कुछ मिल सकता था, उनके पास नहीं गए जिनको तुम्हें कुछ देना पड़ सकता था, यानी कि अपनी तवज्जो, अपनी मोहब्बत, अपनी फिक्र और अपनी क्या करना जी बातों के वसीला से खुदा की कलाम की हौसला अफजाई। तो यीशु मसीह का कलाम यहां पर क्या कहता है, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा और वो जो निकल गए थे उनको वापस नहीं लाए, और यहां पर क्या लिखा है, और गुमशुदा की तलाश नहीं की बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। सब मिलकर कहेंगे गुमशुदा की, मिलकर कहेंगे गुमशुदा की तलाश नहीं की। यीशु मसीह क्या कहता है इस खोई हुई भेड़ के पैगाम में कि तुम में से किसके पास 100 भेड़े हो और एक हो जाए तो वो उसके पास ना जाए, उसे ना ढूंढे, के दिल की हालत को बयान कर रहा है। आज हम सबके लिए जो सबक है वो ये है, हमें अपने दिल के गहरे गहरे उस हिस्से में जाकर सोचने की जरूरत है कि हम अपनी और अपनी फैमिली की किस कदर तक फिक्र और मोहब्बत रखते हैं, हम दूसरों के लिए कैसे जज्बात रखते हैं, उनको क्या उस कमजोर बीमार लाचार भेड़ की तरह देखते हैं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दें, या फिर ये देखते हैं कि इसका फिदिया यीशु ने दिया है, मुझे इससे मोहब्बत करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, रहनुमाई करने की जरूरत है, इसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। और यीशु मसीह से कहता है कि तुम में से जिसके पास 100 भेड़े हों और एक खो जाए, और क्या वो उसे ढूंढने को नहीं जाएगा? और जब वो मिल जाए तो क्या करेगा जी? खुशी होगी, उसे अपने कंधों पर उठा लेगा। और सातवीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत। यहां पर जो 99 भेड़े हैं, दरअसल किसकी तरफ इशारा है? वो लोग जो निजात पा चुके हैं, जो खुदा से वाकिफ हैं, जिन्होंने मसीह की मोहब्बत को समझ लिया है, जो दोजख की आग से निकलकर खुदा के फरदोस में जा चुके हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, जिन्हें अब सिर्फ यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। और एक भेड़ वो है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, जो गुनाहगारों में, शराबियों में, जवारियों में और हर तरह की गाली गलोच और ऐसा बंदा या बंदी है जिसने अभी तक यीशु को अपना दिल नहीं दिया, उसके फजल को कबूल नहीं किया, निजात का पैगाम माना नहीं, वो दोजख से निकलकर जन्नत का वारस अभी तक नहीं बना। यीशु मसीह उसके लिए कह रहा है कि 99 तो जो रास्तबाज है उनको जरूरत नहीं, लेकिन एक जो तौबा का क्या है जी, हकदार है कि वो तौबा करे, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, उसके पीछे तुम नहीं जाते। ये है यीशु मसीह की फिक्र, जैसे उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत। ये वो 99 बंदे और बंदियां हैं जो अपने आप को समझते हैं, जो तौबा की हाजत नहीं रखते, जिन्होंने खुदा को कबूल किया हुआ है, उसके पैगाम को समझते हैं। एक तौबा करने वाले गुनाहगार के पास क्या होती है? आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। इसलिए हमें यीशु मसीह के दिल को समझने की जरूरत है। मेरे साथ मिलकर कहें, हमें यीशु मसीह के दिल को समझने की जरूरत है। जैसी वो फिक्र करता है हम भी करना सीखें, जैसी वो मोहब्बत दिखाता है हम भी वैसी मोहब्बत दिखाएं, तब हम हकीकी तौर पर जान जाएंगे जो बात यहां पर फरीसी कहते हैं कि क्यों गुनाहगार, क्यों वसूल लेने वाले, क्यों ठुकराए हुए लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत। हमारे इर्द गिर्द जब लोग इकट्ठे होंगे तो उसकी वजह क्या है जी? मसीह की मोहब्बत, मसीह का प्यार, माफी, दर्स और बहुत सी दूसरी बातें। अगर आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता तो इससे मुराद है कि हम मसीह की मोहब्बत जाहिर नहीं कर रहे अपनी बातों से, अपनी सोचों से, अपने चाल चलन से। सो आज का सबक हमारे लिए क्या है? खुदा का बंदा पालूस रसूल यूं कहता है, सब मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे, इफिसियों 5:5 उसकी पहली आयत। ये बहुत बड़ा क्या है जी? चैलेंज है जो खुदा का बंदा पालूस रसूल हम सब के सामने रखता है, और ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। सब मिलकर पढ़ेंगे, जाग रहे हैं जी? कौन कौन जाग रहा है? जरा जोरदार तालियां जाएं। इफिसियों 5:5 हम सब उसकी पहली आयत मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर कहेंगे, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानत बनो। किसकी मानत बनो? खुदा की मानत बनो। और खुदा की मानत हम कैसे बन सकते हैं? यीशु मसीह के हम शक्ल बनो। यीशु मसीह के क्या बनो जी? हम शक्ल बनो। और इसी के लिए पालूस रसूल हमें क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पहला करंथियों उसका 11:5 उसकी पहली आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे, तुम मेरी मानत बनो जैसे मैं मसीह की मानत बनता हूं। हमें मसीह की कॉपी करनी है, हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, हमें मसीह के तरीके को सीखना है। तो हम इर्द गिर्द जो भूखे लाचार गुना सताए हुए गुमराह लोग क्या हो उठा होना शुरू हो जाएंगे, ताकि क्या कर सके जी, हम में से मसीह की मोहब्बत की खुशबू ले सके। पौलुस रसूल क्या कहता है, तुम मेरी मानद बनो। क्यों वो कह रहा है, क्योंकि मैं जैसे मसीह की मानद बनता हूं। एक दूसरे के लिए मसीह बने, ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब गाली निकालने को दिल करे तो कहे मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब अपनी मनमानी करने को दिल करे मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब किसी के साथ हसद करने को दिल करे मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब किसी से नफरत करने को दिल करे मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब काम काज करने को दिल ना करे और सिर्फ जाहरी कामों में दिल लगता है तो कहे मैं मसीह की मानद बनूंगा, पूरे बातिल और जान क्या करूंगा इस काम को करूंगा। जब पड़ोसी के बारे में चुगली करने को दिल करे मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब पड़ोसी की चीज का लालच दिल में आए मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब किसी के साथ हसद की बात दिल में आए मैं मसीह की मानद बनूंगा, जब किसी पर लानत करने को दिल करे मैं मसीह की मानद बनूंगा। जो काम करे ये जानकर करे किसके लिए करते हैं, खुदावल यीशु मसीह के जलाल के लिए करते हैं। और जब हम करेंगे तो पौलुस रसूल कहता है जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं तुम सब मसीह जैसे बन जाओगे। ये आज का चैलेंज है हम सब कि हम एक दूसरे के लिए मसीह की मानद बने, फकी फरीसी ना बने जो फिक्र नहीं करते, जो दर्द नहीं रखते, जो तरस नहीं करते, जो रहम नहीं दिखाते, जो दुआ तो करते हैं लेकिन दिखावे की। सो आए इस बात को याद रखें, यीशु मसीह क्या करता है, हमारी बहुत फिक्र करता है। सो आए हम खुदावंद खुदा के जुड़ चुके और खुदावंद खुदा को पुकारना शुरू करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में जो भी रुकावट है जो हमें मसीह की मानद बनने से रोकती है तू उसे दूर कर, हम पर जाहिर कर, ताकि हम इस दुनिया में रहें और दुनिया में रहकर मसीह की मानद बने, अपनी जुबान से, अपनी सोचों से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने पांव से, अपने दिल से, अपने जज्बात से, अपनी हर एक बात से, जो काम करें मसीह की मानद बनने के लिए करें, ताकि सारा जलाल खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। ऐ बाप आए हुए एक एक बंदे और बंदी के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, सबको खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, जो अभी तक खुदा खुदा अभी तक तारीकी में है, जो खोए हुए हैं, जो खोई हुई भेड़ की मानद है, हम सब खुदा खुदा उनको ढूंढने वाले बने, उन तक पैगाम पहुंचाने वाले बने, उनको बेदार करने का वसीला बने, उन पर निजात का पैगाम जाहिर करने का वसीला बने, ताकि आसमान पर बड़ी खुशी हो, सबके दिलों की मुरादों को पूरा कर और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगता हूँ।